नमाओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राब्धिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तो दिदादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुते। मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरौ मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानन्द नमस्तुते। असाधु साधु तदाइन अतिनीच चतह कर हानमुंच कदाचिन माम प्रेम नारद कंठयोस्फुरा। हरे कृष्णा। भागवत सार की श्रृंखला में दसवें स्कंद के 23वें अध्याय पर चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार। तो ये अध्याय, पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा कि कैसे श्री कृष्ण से ग्वाल बालों ने कहा कि हमें थोड़ी भूख लगी है, कुछ चाहिए खाने के लिए। तो अब इस अध्याय में पहले 12 श्लोकों में वर्णन है कि कैसे श्री कृष्ण भेजते हैं ग्वाल बालों को ब्राह्मणों के पास, जो पास में ही यज्ञ कर रहे हैं, और कैसे वे लोग उनकी सेवा नहीं करते। फिर आगे 13वें श्लोक से बताया गया है कि किस प्रकार ब्राह्मणों की जो पत्नियां हैं वो कैसे श्री कृष्ण की ये जो प्रार्थना है कुछ भोजन देने की, कैसे उसके प्रति उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है, इसका वर्णन किया गया है। फिर 22वें श्लोक से आगे वर्णन किया गया है 22 और 23 में कि किस प्रकार गोपियों ने, या क्षमा कीजिए, इन ब्राह्मण पत्नियों ने किस प्रकार श्री कृष्ण की सुंदरता को देखा, तो उनकी सुंदरता का वो वर्णन करती हैं। और फिर 24वें श्लोक से लेकर करीब 37 श्लोक तक श्री कृष्ण कैसे इनके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं, इसका वर्णन है। और अंतिम भाग 38 श्लोक से लेकर जो 52 श्लोक तक है, जिसमें वर्णन है कि कैसे जब ब्राह्मणों ने ये सुना कि उनकी पत्नियों के ऊपर कृपा हो गई, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई, कैसे उन्होंने क्षमा याचना की, इसका वर्णन किया गया है। तो ऐसे पूरा अध्याय बहुत सुंदर अध्याय है। भागवतम का हर अध्याय हमें बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान देता है। कल भी हम लोगों ने सुना किस प्रकार श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र हरण किए, और अब इनका उद्धार, ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण से आकर ग्वाल बालों ने कहा कि बहुत भूख लगी है, कुछ खाना है, तो श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, पास में ही कुछ ब्राह्मण हैं, यज्ञ कर रहे हैं, जाओ उनके पास। वो लोग यज्ञ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो स्वर्ग प्राप्ति करना चाहते हैं, तो इसलिए उनके पास जाओ और उनसे कहना कि यहां पर पास में ही बलराम और कृष्ण है, पहले बलराम का नाम लेना, मेरा नहीं लेना। श्री कृष्ण ने कहा था कि पहले बलराम का नाम लेना और फिर मेरा लेना। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण सोच रहे थे कि बलराम जी तो क्षत्रिय हैं, तो जब ब्राह्मणों को कहा जाएगा कि हाँ कोई क्षत्रिय मांग रहा है तो ब्राह्मण जल्दी दे देंगे, मैं तो ग्वाल बाला हूं, मुझे कौन देगा, मेरा नाम नहीं लेना, तो बलराम जी का नाम लेना। तो ऐसे उन्होंने कहा जाओ और उनसे कुछ खाने के लिए मांग कर ले आओ। तो इस अध्याय में श्री कृष्ण एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हम सबको सिखलाना चाहते हैं। वो सिखलाना चाहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी कृपा उन लोगों पर नहीं करते जो भले ही बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं कर रहे हों, यज्ञ कर रहे हों, दान कर रहे हों, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हों, योग साधना में लगे हों, लेकिन अगर उनके हृदय में भक्ति ना हो तो श्री कृष्ण ऐसे लोगों पर अपनी कृपा नहीं करते। दूसरी ओर उनकी कृपा उन लोगों पर जाती है, उन लोगों पर बड़ी विशेष कृपा रहती है जिनके जिन्होंने हो सकता है कोई बहुत बड़े बड़े यज्ञ पाठ ना किए हों, वेदों को ना पढ़ा हो, ब्रह्मचर्य का पालन ना किया हो, तपस्याएं ना की हों, बहुत अच्छे से यज्ञ करना ना जानते हों, लेकिन हृदय में भक्ति हो, बस सरल हृदय हो जिनका, जिसमें भक्ति स्थापित हो, तो श्री कृष्ण ऐसे लोगों पर अपनी कृपा करते हैं। ये इस अध्याय का सार है जो श्री कृष्ण अब अपनी लीला से समझाने वाले हैं। तो उन्होंने कहा जाओ बलराम जी का नाम लेना और मांगना, तो लड़के गए, ग्वाल बाल गए, देखा ब्राह्मण सब वहां तपस्या कर रहे हैं, तपस्या नहीं यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा तपस्या ही थी उनके लिए, सब सामान लाना, मंत्रों का उच्चारण करना, वो सब अपने उसमें व्यस्त है। तो लड़के गए, बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर उन्होंने ब्राह्मणों को कहा कि हम लोग आए हैं, बलराम जी और कृष्ण ने भेजा, और उन्होंने पूरा दंडवत प्रणाम किया उन ब्राह्मणों को कि ये हम आए हैं, उन यहाँ पर कृष्ण बलराम कृष्ण पास में ही हैं, भूख लग रही है, उनको तो थोड़ा आप कुछ दे दीजिए। फिर उन्होंने देखा कि ब्राह्मण तो ध्यान ही नहीं दे रहे, वो अपने कार्य में लगे हैं, तो उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण सोच रहे होंगे कि अभी हम कैसे दे सकते हैं, यज्ञ पूरा नहीं हुआ। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, जो कार्य यज्ञ में पूरा होना था जब वो तो हो चुका है, अब आप दे सकते हो, प्रायः आपका यज्ञ समाप्त तो होने आया है तो आप दे सकते हो। ब्राह्मण सोच रहे थे दरअसल हम कैसे दे सकते हैं, ये क्षत्रिय ये वैश्य जब तक किसी ब्राह्मण ने नहीं खाया तब तक कैसे कोई अन्य खा सकता है, ये उनका विचार था, तो इसलिए वो देना नहीं चाहते थे, वो ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तो ब्राह्मणों ने ये चीज की तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, भगवान की कृपा चल कर आई उनके द्वार तक और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है, स्वयं कृष्ण मांग रहे हैं, भेजा कृष्ण बलराम ने कि दीजिए, जिनके लिए यज्ञ कर रहे हैं, जिनकी संतुष्टि के लिए यज्ञ कर रहे हैं, वही सामने आकर अगर मांग रहे हैं और ब्राह्मणों ने ध्यान नहीं दिया, एकदम मान लीजिए कि नकार दिया, ऐसे कोई ध्यान नहीं, अब बात उत्तर भी नहीं दिया, कम से कम ग्वाल बाल मांग रहे थे उनको हाँ या ना तो कहते, कुछ नहीं कहा। तो वे लोग बेचारे खड़े रहे कुछ समय, देखा ये लोग तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं, इन्होंने तो एकदम हमें अनसुना कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया। तो फिर ग्वाल बाल जो है वहां से वापस आ गए। हम लोग जब ये कथा सुनते हैं तो हमें लगता है कि कैसे ब्राह्मण हैं, स्वयं श्री कृष्ण मांगने आए या उन्होंने बच्चों को भेजा ग्वाल बालों को, कृष्ण के लिए था, तुरंत देना चाहिए था, ऐसा कैसे हुआ उन्होंने ध्यान नहीं दिया, अनसुना कर दिया। तो बड़ी अच्छी बात नहीं है, तो गलत बात है, हमारे मन में आ जाता है कभी। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हम लोग भी रोज यही करते हैं। हमारे जीवन में, भक्ति के जीवन में, हम इस बात को रोज करते हैं जो ब्राह्मणों ने केवल एक बार कर दिया। क्या करते हैं? कृष्ण की ओर ध्यान नहीं देते। हम लोग जप करते हैं। जप करने का अर्थ क्या है? जप करने का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ में है। अभिन्नत्वम नाम नामिनः, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है, तो ये हम भूल जाते हैं। तो जब हम जप करते हैं, क्या करते हैं? हम कृष्ण की ओर ध्यान नहीं दे रहे। क्यों? उनको जैसे ब्राह्मणों ने कहा है, कुछ नहीं, हमारा महत्वपूर्ण काम क्या है? यज्ञ करना, अग्नि जलाना, कृष्ण की ओर नहीं। तो हम लोग भी बड़े ध्यान से प्रयास करते हैं बैठकर जप करने का, लेकिन कृष्ण पर ध्यान नहीं है। कहाँ ध्यान है? कहीं और ध्यान है। जैसे ब्राह्मणों का ध्यान था अग्नि पर, उसमें क्या आहुतियां डालनी है, अरे कृष्ण खड़े हैं, पहले उन पर ध्यान देना। तो हम भी जब ध्यान पूर्वक जप नहीं करते हैं, तो हम इन ब्राह्मणों की तरह हैं जिन्होंने कृष्ण को नकार दिया। जब हम ध्यान से भागवत भगवद गीता नहीं पढ़ते हैं, हम उन ब्राह्मणों की तरह हैं कि जब हम पढ़ रहे हैं किस लिए? कभी कभी हम ग्रंथ पढ़ते हैं एक दूसरे से प्रतियोगिता करने के लिए, मैं कितना अच्छा उसको प्रस्तुत करूं, वो कितना अच्छा प्रस्तुत करे, मैं इस बात को अच्छे से करूं, प्रतियोगिता के लिए। ये भी भगवान को नकारना है। कृष्ण आए हैं सामने भगवद गीता भागवत के रूप में आपको शुद्ध करने के लिए, और आप उससे शुद्धिकरण की जगह क्या सीख रहे हैं? प्रतियोगिता, अहंकार। तो इसीलिए जब ब्राह्मणों ने नकार दिया या ध्यान नहीं दिया, ये ना सोचिए कि उन्होंने बहुत गलत किया। क्यों? क्योंकि हम भी रोज यही कर रहे हैं, तो हमें सीखना चाहिए कि इससे बाहर निकलना है। तो इसलिए भगवद गीता इसलिए नहीं पढ़नी चाहिए कि हम कोई प्रकांड पंडित हो जाएं, हम श्लोकों को बहुत अच्छे से बोलें, हम शास्त्र को बड़े अच्छे से प्रस्तुत करें, लोग हमारा गुणगान करें, वाह क्या प्रवचन है। शास्त्र पढ़ने चाहिए हृदय की शुद्धिकरण के लिए, एक ही कारण, हृदय का शुद्धिकरण हो। शास्त्र पढ़ने चाहिए ताकि हृदय में भगवान आ सकें। ज्ञान दीपेन भास्वता, भगवान कहते हैं ये उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है शास्त्र पढ़ने का? वेदेश्च सर्वेरहमेव वेद्यो, भगवद्गीता में भगवान ने कहा है। तो इसीलिए शास्त्र पढ़ें प्रतियोगिता के लिए नहीं, अहंकार के लिए नहीं, हृदय शुद्धिकरण के लिए। अन्यथा हम भी वही ब्राह्मण हैं। कभी कभी हम कृष्ण भावनामृत के उद्देश्य को भूल जाते हैं। भक्ति करते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, गृहस्थ रहते हैं, सेवा करते हैं, मंदिर के अध्यक्ष हो जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कृष्ण भावना मृत के उद्देश्य को भूल जाते हैं। हम उन ब्राह्मणों की तरह हैं जो यज्ञ कर रहे हैं, अग्नि शास्त्र का पालन कर रहे हैं, वेदों के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य को भूल गए हैं। तो हमारी प्रार्थना है आप सबसे कि ये ब्राह्मण मत बनिए, ये वैदिक ब्राह्मण मत बनिए, जहां केवल जो रीति रिवाज है उनका पालन हो, जहां हम कृष्ण को भूल जाएं, जीवन के उद्देश्य को भूल जाएं, कृष्ण को नकार दें, ऐसे मत बनिए। ऐसे कई उदाहरण हम दे सकते हैं कि जहां हम इन ब्राह्मणों की तरह कार्य करते हैं। भागवत कथा चल रही हो, हमारे पास अवसर है सुनने का, हम कोई और रीजन देकर इधर उधर हो जाते हैं। ये ब्राह्मण है, कृष्ण है सामने, कथा है सामने, हम सुन सकते हैं, लेकिन हम कोई ना कोई सेवा का बहाना या कुछ, और वो आदत पड़ जाती है। देखिए भक्ति में एक बहुत खतरनाक चीज है आदत डाल लेना, बहुत जल्दी आदत पड़ जाती है। हम शुरुआत में, हमें कोई सेवा होती है, हम बैठ नहीं पाते हैं भागवत में, तो हमें लगता है कि हाँ सेवा कर रहे सेवा, बाद में हमारी सेवा नहीं होती है फिर भी हम नहीं बैठते हैं, क्यों? हमारी सेवा है, कुछ ना कुछ बहाना करते हैं। इसलिए ऐसी आदतें भी ये ब्राह्मण हैं हमारे हृदय में बैठे हुए, दूर कीजिए इनको। और ऐसा स्वाभाविक हो जाता है। हमें ध्यान है कि कई साल पहले हम रात को देर कार्यक्रम किया करते थे, तो देर से आते थे, 11:30-12 बजे ऐसे आना, तो जब सोते थे और सुबह मंगल आरती में रहते थे 4:30 बजे, तो स्वाभाविक है थोड़ी नींद आती थी। तो हम सोचते थे कि जप के पहले जाकर थोड़ा सा 15-20 मिनट सो जाते हैं। जरा उन लोगों को बोलिए आवाज़ कम करें, हर बार क्यों बोलना पड़ता है रोज इन लोगों को, एक बार में समझ जाना चाहिए, बुद्धिमान लोग हैं ना सब। तो एक बार ऐसे ही जब, तो हम सोचते थे कि ये थोड़ा सा सो लेते हैं ताकि जप ध्यान पूर्वक होगा, नहीं तो जप में नींद आएगी। बहुत अच्छी बात थी, कोई गलत बात नहीं सोची थी। तो हम जैसे ही संसार दावानल पूरा होता था, थोड़ा सा पीछे जाकर आश्रम में चले जाते थे, लेट जाते थे। और फिर जब तुलसी आरती वगैरह सब कंप्लीट हो गया, लोग बैठ गए जप करने, तब उठकर आते थे और जप करते थे। हमें लगता था बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा फ्रेश हो रहे हैं। फिर हमने देखा कि कुछ दिन बाद, 2-3 दिन, क्योंकि लगातार ऐसे प्रोग्राम होते थे, फिर हमने देखा कि जिस दिन प्रोग्राम नहीं भी किए होते थे हमने रात को, हम जल्दी भी सोए होते थे, फिर भी हम जैसे ही संसार दावानल खत्म होता था, हम चले जाते थे अंदर कि सो जाते हैं। फिर जब 2-3 दिन ऐसा हो गया, तो हमने सोचा हम ये क्या कर रहे हैं, कि ऐसी आदत डाल ली हमने कि अब कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक आदत बन गई, इसीलिए हम चले जाते थे। तो ये बहुत बड़ा खतरा है, ऐसी आदतें मत डालिए, ये भी कृष्ण को नकारना है। ब्राह्मण मत बनिए ऐसे ब्राह्मण। तो ऐसे ब्राह्मणों ने कृष्ण को नकार दिया, और फिर ये जो बालक हैं ये सब चले गए, और उन्होंने जाकर कृष्ण को बताया कि अरे ये लोग तो सब, हम तो गए थे, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। दरअसल ब्राह्मण अपने आप को बहुत आगे बढ़ा हुआ मान रहे थे, लेकिन थे अज्ञानी, क्योंकि उद्देश्य को नहीं समझ रहे थे। इच्छाएं भरी हुई थी उनके हृदय में, और इसीलिए कृष्ण को नहीं पहचान पाए। तो जब हम भक्ति करते हैं और हमारे हृदय इच्छाओं से पूर्ण होता है, अज्ञान में रहते हैं, सार को नहीं समझते, तो फिर हम भी उन ब्राह्मणों की तरह हैं जो कृष्ण को पहचान नहीं पाते। तो जब बालकों ने आकर कहा कृष्ण से कि अरे ऐसे ऐसे हो गया, कृष्ण केवल हंस दिए, कृष्ण हंसे ये सुनकर। तो क्यों हंसे ये तो सुनकर, अरे कृष्ण को क्रोध होना चाहिए, अच्छा ब्राह्मणों ने ऐसा किया, तो फिर क्यों हंसे कृष्ण? कृष्ण दो कारणों से हंसे। कृष्ण हंसे कि ये सोचकर कि ऐसी चीजों पर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध दिखाने का समय नहीं है, ठीक है बाल गलत किया, क्रोध नहीं करना चाहिए, इसलिए भगवान हंस दिए। केवल उन ब्राह्मणों की मूर्खता पर हंस दिए कि वो जिसे प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं उनके सामने आए और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए भगवान हंस दिए। भगवान हंसे उन बालकों पर ये बतलाने के लिए कि अरे जब भिक्षा मांगने जाओगे तो ऐसा होगा ही, कभी कोई कहेगा दे देगा, कभी कोई नहीं देगा। ये एक भिक्षुक का स्वभाव होना चाहिए कि चिंता नहीं होनी चाहिए उसको कि मैं मांगने गया और मुझे दिया कैसे नहीं, अहंकार। तो कृष्ण हंस दिए और उन्होंने बालकों से कहा कि ठीक है एक काम करो, अब उनकी पत्नियों के पास जाओ और उनकी पत्नियों के पास जाकर ये कहना कि पहले मेरा नाम लेना। अब पहले कहा था उन्होंने बलराम जी का नाम पहले लेना, ने कहा अब पहले मेरा नाम लेना, बलराम जी का नाम नहीं लेना, कृष्ण और बलराम कहना, और उनको कहना कि वही आसपास हैं, लेकिन एक ध्यान रखना, उनको ये नहीं कहना कि उन्हें भूख लगी है। तो बालकों ने कहा अरे अगर हम कहेंगे नहीं उन्हें भूख लगी है तो पता कैसे चलेगा उनको भाई किस लिए आए हैं। तो कृष्ण ने कहा ये कह देना कि हमें भूख लगी है, तो जब ये कहोगे तो समझ में आ जाएगा उनको कि कृष्ण बलराम को भी भूख लगी है। तो क्यों कहा कृष्ण ने ऐसा नहीं कहना कि उन्हें भूख लगी है? क्योंकि कृष्ण उन ब्राह्मण पत्नियों के स्तर को जानते थे। एक बात जान लीजिए, आज तक न ब्राह्मण पत्नियों ने कृष्ण को देखा था, न कृष्ण ने ब्राह्मण पत्नियों को। ऐसा नहीं था कि कृष्ण रोज मिलते थे गोपियों की तरह, अन्य गोपियों की तरह उनको, उनके साथ कुछ बाल लीलाएं उन्होंने की, उनके घर से माखन चुराया, बिल्कुल नहीं। ब्राह्मण पत्नियों ने नहीं देखा था और ना ही कृष्ण ने, लेकिन कृष्ण जानते थे इतनी श्रेष्ठ भक्त हैं, अगर इन्हें पता भी चला कि मुझे भूख लगी है तो बड़ी व्यथित हो जाएंगी, दुखी हो जाएंगी कि अरे हमारे रहते हुए कृष्ण भूखे हैं, जीवन का लाभ क्या है। इसे कहते हैं भक्ति, और कृष्ण इस भक्ति को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, पहचान रहे हैं, बता रहे हैं। उन्हें कहना नहीं, उन्हें कहना यहां पर है, हम लोग हैं यहां, वो अपने आप लेकर आएंगे। देखिए कितना सुंदर भाव है कि कृष्ण ये सोच रहे हैं कि अगर उन्हें पता भी चल गया कि मुझे भूख लगी है तो इतनी व्यथित, इतनी दुखी हो जाएंगी कि मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त ऐसे दुखी हो। हम लोगों का कब ये भाव आएगा कि कृष्ण भूखे हैं, या कृष्ण ये सुनकर कि केवल कृष्ण को इतना सा भी कष्ट हुआ है, हमारे जीवन में कब दुख आएगा? बिल्कुल नहीं आता। अगर हमें लगता भी है कि कृष्ण को थोड़ा कष्ट है तो हम सोचते हैं अरे कृष्ण भगवान है, उनको कोई कष्ट नहीं होता, हम कारण दे देते हैं। जैसे जब विग्रह को भोग लगता है और अगर समय पर ना हो तो पुजारी को ऐसी चिंता होनी चाहिए जैसे ब्राह्मण पत्नियों को है। उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि वो तो कृष्ण है, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानम, आध्यात्मिक जगत में लाखों लक्ष्मियां उनकी सेवा कर रही हैं, इसलिए कोई चिंता नहीं है, उनको ऐसे भूख नहीं लग रही है। हमें फिलॉसफी नहीं देनी चाहिए कि दरअसल ये जो हम अर्पण करते हैं तो अपने लिए करते हैं, कृष्ण के लिए नहीं करते हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि मेरी वजह से एक सेकंड भी अगर कृष्ण भूखे रह गए तो मेरे जीवन का कोई लाभ नहीं है। तो श्री कृष्ण ने ऐसे कहा और वो ब्राह्मण पत्नियों के पास भेज दिया बालकों को। अब बालक आए ब्राह्मण पत्नियों के पास, उसी नम्रता से हाथ जोड़ा, प्रणाम किया पृथ्वी पर गिरकर उन्होंने, जैसे ब्राह्मणों को किया था, क्योंकि ब्राह्मण की जो पत्नी होती है वो माता के समान मानी गई है, सात माताओं में से एक माता ब्राह्मण पत्नी कहलाती है। तो उन्होंने प्रणाम किया और फिर उन्होंने बड़ी नम्रता से कहा कि कृष्ण बलराम यहीं पास में है। और फिर ये केवल उन्होंने सुना ब्राह्मण पत्नियों ने कि कृष्ण बलराम पास में है, कृष्ण एकदम निकट हैं, वो सुनते ही मूर्छित हो गई, इतने भाव में चली गई, उनको उनको विश्वास नहीं हुआ कि कृष्ण यहां है। आज तक जिनके बारे में हम सुन रहे थे, किससे सुन रहे थे, वो फूल बेचने वाली आती थी वहां से वो बताती थी, फल बेचने वाली आती थी वो बताती थी, आज कृष्ण को देखा, आज कृष्ण ने ये लीला की, अरे ब्रज में ये चर्चा है। आज तक जिनके बारे में केवल सुना था, जिनकी सुंदरता के बारे में केवल सुना था, वो बहुत निकट हैं, आप देख सकते हैं, मूर्छित हो गई, संभाल नहीं पाई अपने आप को। और फिर जब उन्हें होश आया तो बालकों ने सोचा अब क्या करें, फिर उन्होंने कह ही दिया उनको भूख लगी है कृष्ण बलराम, कृष्ण ने मना किया था कहना नहीं, लेकिन उन्होंने कह दिया, क्या कहें ये लोग, ये लोग तो ऐसे बस नाम सुनकर मूर्छित हो गई, अब और कुछ नहीं कहेंगे, भाई भूख लगी है, मूर्छित मत हो, चलो भोजन भोजन लेकर। तो उन्होंने कह दिया भूख लगी है। तो जैसे ही उन्होंने सुना, जो भी सामग्री वहां थी बनी हुई, आचार्य समझाते हैं चारों प्रकार के जो भोज्य सामग्री थी, मतलब चार, मतलब एक जो चबाया जाता है, एक जो चूसा जाता है, एक जो चाटा जाता है, और एक जो निगला जाता है, ये चार प्रकार के भोजन होते हैं। तो उन चारों प्रकार के भोजनों को लेके चली, अलग अलग होता है ना, हर भोजन कंप्लीट तब होता है, जैसे चाटने के लिए चटनी होनी चाहिए इत्यादि, ऐसे तो उसको लेकर चली और बड़ी तीव्रता से जा रही हैं। ऐसे वर्णन किया है कि वो इस तरह जा रही थी मानो जैसे नदी सागर की ओर भागती है। कुंती महारानी भी अपनी प्रार्थनाओं में यही प्रार्थना भगवान से करती है कि मेरा मन आपकी तरफ ऐसे भागना चाहिए जैसे गंगा सागर की ओर भागती है, ये कुंती महारानी की प्रार्थना है। तो यहां भी यही वर्णन है कि वो भाग रही हैं लेकर, उस समय उनके परिवार वालों ने रोकने का प्रयास किया, ऐसा तो नहीं था जैसे घर से बाहर निकली सबने अरे कहां जा रहे हो कहां जा रहे हो, रोक किसी की नहीं सुनी उन्होंने। उनके पति थे, उनके अन्य परिवार के जन, किसी के पिता वगैरह, सबने रोकने का प्रयास किया, वो बिल्कुल नहीं रुकी। जैसे नदी जब सागर की ओर जाती है तो कई बाधाएं आती हैं, कभी कोई पत्थर आ जाता है बीच में, तो नदी धीरे 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 उस पत्थर को काटकर उसमें से चली जाती है, या फिर कहीं से दूसरी तरह से अपना रास्ता बनाकर चली जाती है, लेकिन रुकती नहीं है नदी। तो ऐसे ही इनको रोका जा रहा था और वे रुकी नहीं। आगे वर्णन आता है कि केवल एक स्त्री को रोक दिया गया था जबरदस्ती, वो जा नहीं पाई, बाकी सब चली गई। उसका क्या हुआ वो बाद में वर्णन करेंगे। तो सारी की सारी ये चली गई और अपना सारा जितना भोग की सामग्री थी उस सब को लेकर चलें, और कोई उनको रोक नहीं पा रहा है। यह हम लोग देखते हैं कि कैसे श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम आया, आज तक देखा नहीं था, जानती नहीं थी, मिली नहीं थी, सुना था। इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश कि सुनना ही देखना है, ये जान लीजिए। कई लोग कहते हैं देखना ही विश्वास करना है, सीइंग इज बिलीविंग बट हियरिंग इज सीइंग। यहां अगर हम सुनते हैं, कितना प्रेम उनको हो गया केवल सुन सुन के, कृष्ण की लीलाओं के बारे में, कृष्ण की सुंदरता के बारे में, कृष्ण के विषय में, तो भागी वो। जैसे मान लो कि बस अब वो सब केवल सेवा कृष्ण की करना चाहते हैं। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये ब्राह्मण पत्नियां हमें सिखलाती हैं, सेवा का भाव। सेवा में दो चीजें बहुत आवश्यक हैं जब हम सेवा करें, पहला अहेतुकी, दूसरा अप्रतिहता। भागवत में इसको कहा गया है पहले स्कंद में। तो हमारी सेवा कैसी हो, अहेतुकी अप्रतिहता। अहेतुकी मतलब जिसका कोई हेतु ना हो, हम सेवा कर रहे हैं उसके पीछे हुए छिपा कोई कारण ना हो कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, मुझे वो प्राप्त हो जाए। हाँ दिखाने में तो मैं बहुत सेवा कर रहा हूं, लेकिन हृदय में इच्छा बनी हुई है, भगवान मैंने आज आपके लिए भोग बनाया है, कम से कम ये कर दीजिए, अहेतुकी। और जब हमारी सेवा अहेतुकी होती है तब वो अप्रतिहता हो सकती है। देखिए भागवत में जब भी शब्द भी इस्तेमाल किए जाते तो बड़े चुनकर ध्यान से, इसलिए पहले अहेतुकी फिर अप्रतिहता। तो जब हमारी सेवा बिना हेतु के होती है, बिना किसी छुपे हुए कारण के होती है, तब ये सतत चल सकती है, अहेतुक अप्रतिहता, उसका खंडन नहीं होता, अखंडित चलती है। लेकिन जब कहीं पर छुपा हुआ भाव है, कोई गलत इच्छा छुपी हुई है, तो चाहे वो इच्छा पूरी हो या ना हो, हमारे उत्साह में कमी आ जाती है। तो उत्साह में, सेवा में उत्साह की कमी का एक कारण है हेतु, कि हम लोग कहीं ना कहीं एक कोई हेतु बना रखे हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी की इच्छा हो कि मैं बहुत अच्छा कीर्तन करूं, केवल इसलिए कि मेरा गुणगान हो, या लोग मुझे हमेशा कहें जब भी हो उत्सव हो ये हो प्रभु गाना तो आपको ही है, तो बस। और मान लीजिए किसी उत्सव में ये नहीं कहा जाए, कोई आपको पूछे ही नहीं बहुत बड़ा उत्सव है, ये उदाहरण देते हैं रामनवमी है, कौन गाएंगे, प्रभु आप ही गाएंगे, ठीक है, नरसिंह चतुर्दशी, प्रभु आप ही गाएंगे, फिर जन्माष्टमी आया, बहुत बड़ा उत्सव, अब बहुत बड़ा स्टेज लगने वाला है, लग गया है स्टेज, हजारों लोग बैठे देख रहे हैं, आपने वो प्रभु जी को बुलाया ही नहीं कीर्तन करने के लिए, सारा उत्साह चला जाएगा, 3 महीने तक कीर्तन नहीं करेंगे मंदिर में निश्चित, ये क्या फायदा हुआ। जब मेन अवसर था तो मुझे नहीं बिठाया, इसे कहते हैं हेतु, और इसे कहते हैं सेवा में रुचि चले जाना। तो अगर हमारा हेतु है तो हम फिर सेवा नहीं कर सकते। तो इसलिए अहेतुकी होनी चाहिए ताकि हमारा उत्साह बना रहे। हम इसको एक व्यापार नहीं बनाए, हेतु सेवा को व्यापार बना देता है। इसीलिए सेवा तभी होती है जब अहेतुकी है, हेतु है तो व्यापार है। सिंपल, बहुत सरल। अहेतुकी है तो सेवा है, तो सेवा कीजिए व्यापार नहीं, जैसा इन ब्राह्मण पत्नियों ने किया। उनका क्या हेतु था जब लेके जा रही थी? उनके मन में कोई भाव नहीं था कि अरे हमें ये प्राप्त हो जाएगा, हमें वो प्राप्त हो जाएगा, कुछ नहीं। बस उन्होंने सोचा कृष्ण भूखे हैं, उनको देना है, बस। अहेतुकी। तो देखिए कितने सुंदर सिद्धांत, कितने सुंदर निर्देश भागवत की इन लीलाओं से मिल रहे। सेवा कीजिए व्यापार नहीं, बहुत महत्वपूर्ण संदेश। श्रवण से कृष्ण को देखिए, ये हमारे आंदोलन का आधार। श्रवण से कृष्ण को देखिए। तो ऐसी चीजें कितनी सुंदर सुंदर। और कृष्ण को नकारिए नहीं, कृष्ण को अनसुना मत कीजिए, उन पर ध्यान नहीं देने की स्थिति में मत आइए। जब ध्यान पूर्वक कीजिए, शास्त्र पढ़िए सही उद्देश्य से। तो ऐसे ब्राह्मण पत्नी आप श्री कृष्ण के पास पहुंची, समक्ष पहुंची, और उन्होंने देखा सामने कृष्ण है, बहुत सुंदर। उनके रूप का वो वर्णन करने लगी। उन्होंने देखा कृष्ण का श्याम वर्ण पीतांबर धारण किए हुए और गले में वनमाला है, मोर पंख लगाए हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खड़े हुए। और उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण ने अपना हाथ अपने एक मित्र के कंधे पर रखा हुआ है। बहुत सुंदर दृश्य देख रही हैं कि हाथ कंधे पर रखा हुआ है और एक हाथ में कमल का फूल है, उसको घुमा रहे हैं। आचार्यगण समझाते हैं कि कृष्ण ब्राह्मण पत्नियों को बता रहे थे कि आपका जो हृदय है, क्योंकि मुझ में पूर्ण रूप से लगा है, इसीलिए आज ये जैसे ये कमल झूम रहा है, कृष्ण से घुमा रहे थे तो कमल झूम रहा था, तो आज जैसे कमल झूम रहा है, ये कमल आपके हृदय का सूचक है, और क्योंकि आपका मन पूर्ण रूप से भक्ति से भरा हुआ है, आज मुझे देखकर आपका मन झूम उठा है। या दूसरे ओर कृष्ण ये कहना चाह रहे थे कि ये जो कमल है, ये आपका नहीं, मेरा हृदय है, और क्योंकि आज मैं आपको देख रहा हूं, मेरे इतने श्रेष्ठ भक्तों को देख रहा हूं, मेरा हृदय झूम उठा है आपको देखकर। ये कृष्ण कहना चाह रहे थे।